أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة المائدة آيات نمبر 17 سے 26 تک کریں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے تیمم کے بارے میں، وضو کے بارے میں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہاں پر فرائض وضو ہمیں بتائے گئے کہ چار فرائض ہیں وضو کے. یعنی وضو کا آپ کو بالکل نہ پانی کہیں مل رہا ہو، کم ہو پانی، تو آپ ان چار فرائض کو کم از کم پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا ایٹ لیسٹ وضو ہو جاتا ہے. تو یہ چار فرائض یہاں پر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمجھ لیں آیت تیمم ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ تیمم آپ کن حالتوں میں کر سکتے ہیں، اور کچھ مسائل اس سے ریلیٹڈ تھے جن کے سوال آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ان کا جواب دے دیا جائے. امید ہے آپ لوگوں کو اب وضو، غسل اور تیمم تینوں کے طریقے آ گئے ہوں گے. غسل کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اور غسل کے طریقے میں ایک بات کو دھیان سے سن لیجئے، ضروری بات ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا. ٹھیک ہے، اگر آپ کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالتے تو غسل نہیں ہوگا. اب یہ بات آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو سکھائیں تاکہ وہ صحیح سے پاکی اختیار کریں. پھر میں نے آپ کو حیض اور جنابت کے غسل میں فرق بھی بتایا تھا، آپ کو امید ہے کہ وہ پتہ چل گیا ہوگا. ویسے اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ یعنی جب حیض سے کرتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کمپلیٹلی کریں گے. جب ہم بستری کے بعد غسل کرنا ہے تو اس میں اتنا سا گنجائش مل سکتی ہے کہ آپ اپنے پورے بال نہ کھولیں. اگر چوٹیاں ایسے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسے چوٹیاں ٹائٹ بنائی ہوئی ہیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر سے پانی بہا سکتے ہیں. مگر جو حیض وغیرہ کا غسل ہے، اس میں آپ نے حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا، اس میں آپ نے پورے بال کھول کے ایک ایک بال تک بھی پانی جانا چاہیے. وضو کا بھی آپ کو میں نے طریقہ بتایا، بسم اللہ پڑھ کے آپ ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے. آپ ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے اور جھاڑنا بھی ہے، یعنی صرف چڑھانا ہے بس، جھاڑنا بھی ہے. چہرے کو بھی دھونا ہے، بازو بھی، کوہنیوں تک، کوہنیاں اکثر رہ جاتی ہیں، مسا کرنا ہے، اور کانوں میں آپ نے انگلیاں پھیرنی ہیں، اور اس میں شامل ہے سر کے مسا میں. اور پھر پیروں کو دھونا ہے. خاص طور پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کعبین تک، یعنی آپ کے جو اینکلز ہیں، ٹخنے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اب ایک سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غسل کرنے میں آپ نے پہلے وضو کر لیا پھر آپ نے پانی بہایا، جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، لیکن نہاتے ہوئے پھر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا، تو اب وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگایا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آخر میں آپ دوبارہ وضو کر لیجیے. ٹھیک ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی تو دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، یا ڈائپر چینج کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نہیں، اس سے نہیں وضو ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بعض کہتے ہیں کہ وضو کے فرائض میں تو اتنا نہیں ہے کہ یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ چہرے کو دھونا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، مگر غسل کے فرائض میں ہے. تو اس لیے بعض لوگ وضو کے فرائض میں نہیں لیتے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو، بلکہ وہ سنت میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ہاں غسل کا بھی طریقے کا سن لیں، بس سیدھے شاور میں گئے، شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، باہر نکل آئے، اور آپ نے سوچ لیا کہ میرا غسل بھی ہو گیا، میرا وضو بھی ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، फिर आपको ये मैंने बताया था कि तयम्मुम जो है वो वुजू के भी कायम मकाम है, यानी उसका भी ऑल्टरनेट है और गुसल का भी है। तो जिन चीजों से वुजू टूट जाता है उन्हीं से तयम्मुम भी खत्म हो जाता है। अब बाज लोगों ने ये पूछा कि क्या हर नमाज से पहले नया तयम्मुम करेंगे? तो जैसे हम वुजू के लिए करते हैं, अगर वुजू नहीं है तो फिर हम वुजू कर लेते हैं, तो इसी तरह अगर तयम्मुम आपका टूट गया है तो फिर आप तयम्मुम करेंगे। अगर पानी कहीं आगे जाके मिल जाता है तो फिर तो जाहिर है गुसल भी करके नमाज पढ़ेंगे, या वुजू है तो वुजू करके नमाज पढ़ेंगे, मगर पिछली नमाज नहीं दोहराएंगे। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे अक्सर यहाँ से जो सफर होते हैं वो 20-25 घंटे के हो जाते हैं, बाज दफा बीच में ट्रांजिट भी होता है, तो हम जब किसी जगह पहुंचे हैं, या हम जहाज में हैं, या हम पहुंच के मसलन एयरपोर्ट पे हमारा कुछ टाइम है बैठने का, 5-6 घंटे हैं, और कई नमाजों के टाइम आ रहे हैं और नमाजें मतलब मिस होने का चांस है, तो अब ये नहीं करेंगे कि ओ मैं घर पहुंचूंगी तो फिर मैं नहाऊं धोऊंगी फिर उसके बाद नमाज पढ़ूंगी। तो अब आपने जब चेक किया बाथरूम जाके तो आप पाक हो गई हैं पीरियड से, अब क्या करेंगे? अब वहां पे कोई नहाने का इंतजाम नहीं है, पानी है मगर नहाने का इंतजाम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो उस वक्त भी आप तयम्मुम करेंगे, क्योंकि तयम्मुम गुसल के भी कायम मकाम है, ठीक है? मगर देख लें आप कि नमाज छोड़ने का कहीं नहीं हमें जवाज मिलता कि हाँ नमाज आप छोड़ लो कोई बात नहीं है। जब छोटी छोटी बातों पे लोग नमाज छोड़ देते हैं, नहीं हमारे छोटे बच्चे हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते, कभी यानी कितनी तरह के बहाने, हमसे सो के उठा नहीं जाता, हम दवाइयां खाते हैं, जो भी है, मगर नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अच्छा, जब आपने जनाबत की हालत है मिसाल के तौर पे, और या हैज से आप पाक हुए हैं तयम्मुम करके, पानी नहीं था, अब आप क्या करेंगे? अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोजा भी रख सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो कि आप वुजू या गुसल के बाद आपके लिए जायज होते थे, वो अब तयम्मुम से जायज हो गए। ये नहीं कि तयम्मुम करके सिर्फ नमाज पढ़ सकते हैं, मैं रोजा नहीं रख सकती या मैं कुछ और नहीं कर सकती, नहीं, सारे वो काम जो आप वुजू या गुसल के साथ आपके लिए जायज होते थे अब वो तयम्मुम के साथ जायज हो गए, ठीक है? अच्छा, अब ये भी सवाल है कि मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता भी दिया था कि इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको और वाजे कर देती हूँ कि अगर मसलन सॉक्स पहनी हुई है, सॉक्स उतार के आपने रख दी, और मिसाल के तौर पे उसी वक्त दूसरी सॉक्स पहन ली, मसलन आप को गर्मी लगी तो आपने उतार ही दी, या आपने धोने के लिए दे दी उतार के और दूसरी पहन ली, तो आपका वुजू तो है इस वक्त, मगर अब के जब वुजू टूटेगा तो अब आप सॉक्स के ऊपर मसा नहीं कर सकती। मसलन आपने दूसरी जो पहन ली आप, तो अब इन वाली पे नहीं कर सकती, वो पिछली वाली पे कर सकती, क्योंकि उनको आपने उस वक्त वुजू करके पहना था। मिसाल के तौर पे जैसे फजर पे मसा करके, वुजू करके आपने सॉक्स पहनी, अब वुजू करके आपने सॉक्स पहनी हुई है, अब दोपहर को आपको गर्मी लग गई तो आपने सॉक्स उतार दी, अब आप जोहर पढ़ लें, आपका वुजू था आपने पढ़ ली, असर भी पढ़ ली, मगरिब से पहले आपका वुजू टूट गया, तो अब आपको पूरा वुजू करना पड़ेगा। या आपने नई सॉक्स भी पहन ली थी, अगर बीच में आपने मसलन 1 मिनट के बाद ही आपने नई सॉक्स पहन ली, लेकिन ये आप आपने उतार दी और दूसरी पहन ली, तो वुजू तो आपका है, लेकिन अब जबकि वुजू टूटेगा तो अब आप जो वुजू करेंगे वो आप मसा के साथ नहीं कर सकते, अब आपको ये सेकेंड वाली सॉक्स उतार के धोना पड़ेगा पैरों को। इस तरह बीमारों के बारे में बहुत ज्यादा सवाल है कि वो बाथरूम नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, देखें वो नहीं बाथरूम जा सकते, उनकी जो तीमारदारी करने वाले हैं वो तो जा सकते हैं ना, तो वो पानी ले आए और उनको बिस्तर पे वुजू करा दें, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम है, ये नहीं कि आप फौरन ही कहें कि नहीं चलो तयम्मुम कर लेते, तो अगर आप उनको वुजू करा देंगे और वो उस वुजू से नमाज पढ़ लेंगे तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है, अनलेस ये कि वो उनका कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा जख्म है कि नहीं वो वुजू कर सकते, अगर जख्म भी है तो उस उतनी जगह पे मसा कर ले, बाकी पे तो वुजू करे ना। अच्छा, अब वुजू को तोड़ने का भी आया कि भाई क्या उल्टी से वुजू टूट जाता है, क्या खून निकलने से वुजू टूट जाता है, क्या ये सारी चीजें बातें पूछी गई हैं। तो एक बात आपको मैं सिंपल सी बता देती हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जिस्म में सिवाय सभी लैन से कुछ निकलता है, यानी प्राइवेट पार्ट्स जो हैं उनसे कुछ निकलता है तो उससे वुजू टूटेगा। उसके अलावा जिस्म के किसी और हिस्से से कुछ निकला, मसलन खून निकल आया, उल्टी निकल आई, पीप निकल आई, तो उससे नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पेट में सुराख करके वहां से पेशाब या पखाना निकाला गया है तो उससे टूट जाएगा। यानी ये जो चीजें गंदगी की सभी लेन से निकलती थी वही अगर कहीं और से निकाली गई है तो उससे भी टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो जानवर हम खा नहीं सकते, जो हमारे लिए हलाल नहीं है खाने, उनकी खाल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो पर्स हैं, चाहे वो टोपियां हैं, चाहे वो जैकेट्स हैं, चाहे वो शूज अक्सर बनाए गए होते हैं डिफरेंट स्किन्स के, स्नेक स्किन है, कोई पिग की है, कोई तरह की फॉक्स स्किन है, तो वो नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। हाँ, वो जानवर जिनको हम खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय है, बकरी है, ये वो जानवर हैं, ये अगर मुर्दा भी हो ना, जैसे कि अब ये लोग अगर नहीं भी उसको जिबा करते, वो मुर्दा है, करंट दे के उनको मार दिया, तो उनकी खालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं दबागत के बाद, यानी उसकी बिल्कुल सफाई जब कर दी जाती है तो उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हैं। उसकी बनी हुई जैकेट वगैरह, वो मुर्दा जानवर की भी आप, यानी गाय बकरी वगैरह जिनको आप खाते हैं, जिनको अगर जिबा किया जाए तो वो हमारे लिए हलाल है, वो अगर मर जाती है तो उनकी खाल फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिबागत के बाद। ठीक है, एक प्रोसेसिंग होती है दिबागत, यानी वो तो करते ही है, जाहिर है हमारे यहाँ तो अब ऐसे हैं कि उनको अच्छी तरह साफ करके ही जाहिर है उनसे यूज करते हैं। तो ये चंद एक मसाइल थे जो इससे रिलेटेड थे। इसके बाद हमने पढ़ा मीसाक के बारे में, और ये पढ़ा कि अदल कितना जरूरी है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अदल से आपने नहीं हटना। और इसमें भी एक सवाल आया कि मिसाल के तौर पे किसी ने पूछा, और ये बड़ा रेलिवेंट इसलिए ये सवाल है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ऐसी चीजें की जाती हैं और बहुत कॉमन है कि मतलब बर्थ सर्टिफिकेट पिछला बनवा लिया, और जितना कि भाई ताकि हमें कहीं एडमिशन मिल जाए या ताकि नौकरी के लिए मसला ना हो, या वो कह रही थी कि एक्सपीरियंस के वो मांगते हैं जॉब पे, तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो अपने मुल्कों से आप बाहर के मुल्क गए हैं तो अपने मुल्कों से जाली पेपर बनवा लिए एक्सपीरियंस के और वो मंगवा लिए। तो ये सारा अदल के खिलाफ है, ना सिर्फ झूठ है, धोखा है, अदल के भी खिलाफ है। अगर मुत्तकी बनना चाहते हैं तो अदल पे कायम रहना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ अकरबु लित्तकवा। ठीक है, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरह बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के वादे को तोड़ा, और अल्लाह ताला का वादा जो पूरा करते हैं उनसे अल्लाह ताला ने किन इनामात का अहद किया हुआ, और जो अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं फिर उनके ऊपर कैसी लानत होती है, कैसे उनके दिल सख्त हो जाते हैं। फिर वो जब दिल सख्त हो जाए तो फिर ठीक है, फिर तो अल्लाह का कलाम भी वो चेंज कर देते हैं, और आपने देखा कि फिर इसीलिए इल्म भी निकल जाता है, इल्म रिटेन नहीं रख सकता फिर इंसान। और ईसाइयों ने भी यही कारनामे किए। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा आयत नंबर 15 में, हमें ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि जो रसूल आखिरी हैं नबी अलैहिस्सलाम, वो ये ना समझें कि सिर्फ अरबों के लिए आए हैं। या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना, हमारे रसूल आ गए हैं तुम्हारे पास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्पेसिफिक कौम की तरफ नहीं आए, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम या दूसरे पैगंबर बनी इसराइल की तरफ आए हैं, या कोई पैगंबर आद की तरफ आए हैं, या कोई समूद की तरफ आए हैं, या कोई मदियन की तरफ आए हैं, तो वो स्पेसिफिक बस्तियों की तरफ आते थे। नबी अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजे गए, और यहां से पता चला कि वो अहले किताब के लिए भी रसूल बना के भेजे गए। तो वो आज अपनी जान ये कह के छुड़ा नहीं सकते कि कि वो तो अरबों के रसूल थे। इनमें से बाज मानते हैं कि वो रसूल थे, लेकिन कहते हैं वो हमारा काम नहीं है उनके ऊपर ईमान लाना, क्योंकि वो तो अरबों के लिए रसूल बना के भेजेगा, हमारे लिए तो नहीं भेजेगा। ये आयत वाजे करती है कि वो अहले किताब के लिए भी रसूल बना के भेजेगा। फिर हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को नूर बनाया है, नूर है ये, रोशनी करता है, और ये वाजे किताब है। अब इसके बाद भी, नूर आने के बाद भी कोई अंधेरों में भटकता रहे और इसको प्रेफर करे कि मैंने अंधेरों में रहना है, तो फिर तो ये उसकी अपनी ही बदबख्ती है, फिर किसी और को तो नहीं कुछ कह सकते। और हम जो आज बोलते हैं ना रोशन ख्याली, रोशन ख्याल बनना है हमने, हाँ, तो रोशन ख्याल तो इस कुरान से बन सकते हैं, क्योंकि ये नूर है, ये है नूर। लेकिन हम रोशनी में आने की बजाय अंधेरों में रहने को रोशन ख्याली समझते हैं और सोचते हैं कि ये रोशन ख्याली है, कि हम दोबारा उन्हीं जिहालत के अंधेरों में चले जाएं। शैतान ने कितना इंसान को धोखा दिया और उसको दिखाया कि ये रोशन ख्याली है, अंधेरों में रहना। अल्लाहु अकबर। इसी तरह फिर हमने देखा कि ये कुरान रास्ता किसको दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आज हम इसके जरिए अपनी नियतों का भी जायजा लेंगे। हमारी नियत क्या है पढ़ने की, इस कुरान को सीखने की? आप सब किसी ना किसी वजह से यहां बैठे हुए, अपने आप से पूछिए वो क्या वजह है जिससे मैं इधर बैठी हूं, अपना वक्त लगा रही हूं। जाहिर है किसी के पास भी आजकल वक्त नहीं है, लेकिन क्यों लगा रही हूं? और इसी जिमन में यहां पर एक हदीस आपको बताती चलूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखो, कुरान को सीखो, इल्म नहीं, इल्म को काट दें, कुरान सीखो, और अल्लाह से इसके जरिए जन्नत का सवाल करो। यानी ये वो किताब है कि जिसको सीखने पे आप अल्लाह से जन्नत का सवाल कर सकते हैं कि ए अल्लाह मैं ये सीख रही हूं, तू इसको जरिया बना दे मेरे जन्नत में जाने का, इसके इसके जरिए मुझे जन्नत अता फरमा। इससे पहले कि इस कुरान को ऐसे लोग सीखें जो इसके जरिए दुनिया तलब करें, ठीक है? क्योंकि कुरान को जो सीखते हैं लोग, वो तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, वो लोग जो इसके जरिए फखर करते हैं कि जी मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, मुझे इतना इनाम मिल गया, मैं तो बहुत बड़ी बन गई, मैंने इतने साल का कोर्स मुकम्मल किया है, मेरी ग्रेजुएशन हो गई, इसके जरिए फखर करते हैं, मैं तो बहुत बड़ी आलिमा बन गई हूँ। नंबर टू, वो जो इसके जरिए माल कमाते हैं, नाहक माल कमाते हैं। नंबर थ्री, वो जो इससे अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हैं जो कुरान सीखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुरान सीखो किस लिए? इसके जरिए जन्नत का सवाल करने की। तो तीसरी किस्म के लोग बनना है कि जो अल्लाह के लिए सीखते हैं। ये सिलसिला सहीहा की यह हदीस है। तो यहां पे हमें पता चला कि यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिदवानहु, इसके जरिए अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है, सबको नहीं हिदायत मिलती इससे। इसलिए आप देखेंगे कई लोग कोर्स करते भी रहते हैं, बहुत सारे उन्होंने कोर्स किए होते हैं, जी मैंने यहां से भी पढ़ा हुआ, वहां से भी पढ़ा हुआ, इतने साल का मैंने फलाने कोर्स किए हैं, और हिदायत फिर भी नहीं आई होती। क्यों? इस यहाँ पे कमी है। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिदवानहु, कि अल्लाह हिदायत इसके जरिए उनको ही देता है जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह की रजा पाने, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने ऐसा इल्म सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए सीखा जिससे अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है, यानी ये वाला इल्म कुरान का किस लिए सीखा? सिर्फ दुनियावी मकासिद के लिए सीखा, तो वो कयामत के दिन जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएगा। आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह ताला माफ फरमा दे हम सबको, जन्नत की खुशबू तो कई 100 साल के फासले तक आती है। और वो ऐसा शख्स है जिसने इल्म सीखा है। अब कहने को कुरान पढ़ रहे हैं जी, हदीस पढ़ रहे हैं जी, ये इतने उलूम दीन सीख रहे हैं, इतने इतने साल लगा लिए हैं, मगर अंदर नियत क्या थी? अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना नहीं थी, कुछ और मकासिद थे। तो क्या वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा? तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए अपनी नियतों को सही करना बेहद जरूरी है। ये ऑप्शन नहीं है कि चलो नहीं भी सही हुई सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, चलो ना मिले जिसके जरिए ना भी जन्नत मिले तो क्या, नहीं, इसके जरिए जन्नत आप हासिल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अपनी नियत दुरुस्त करके। उतने ही घंटे आप बैठेंगे, उतना ही काम करेंगे, लेकिन नियत के फतूर की वजह से ये देख लें कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और नियत सही होगी, एफर्ट उतनी ही लगी है, लेकिन उसे जन्नत पा लेंगे। और फिर अल्लाह ताला इसके जरिए सुबुल असलाम की तरफ हिदायत देता है, सुबुल असलाम की रहनुमाई करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, एक मैंने आपको इसका पिछली दफा बताया था माना कि सुबुल असलाम से मतलब क्या है, कि अल्लाह ताला रहनुमाई करता है सलामती के रास्तों की। बहुत सारे हम डिसीजंस एवरी डे हमें मेक करने होते हैं, क्या करें क्या ना करें, अल्लाह ताला उनमें रहनुमाई खुद फरमाता है इस किताब के जरिए, जो इस किताब को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है। और सुबुल सलाम का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सलामती के रास्ते की रहनुमाई करता है, यानी नेकी के रास्ते, वो उसको अल्लाह ताला सुझा देता है, उसको तौफीक दे देता है उनको करने की, नेकियों को। सलामती है ना, जिन रास्तों से जन्नत तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वो बहुत सारे रास्ते हैं इस तरह से। वैसे तो रास्ता कहने को तो एक ऐसे सिराते मुस्तकीम है, मगर सुबुल सलाम का मतलब क्या है कि यानी नेकियां बहुत सारी हैं, नेकी के बहुत सारे रास्ते हैं जो इंसान करके उनके ऊपर चल के उस सिराते मुस्तकीम पे रह सकता है। अब मिसाल के तौर पे इसको इस तरह आप समझें कि सदका भी नेकी है, कुरान पाक सीखना भी नेकी है, इंसानियत की खिदमत करना भी नेकी है, माल खर्च करना अल्लाह के रास्ते में भी नेकी है, बहुत सारे ये रास्ते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हिदायत नहीं दे रहा होता ना, उनके सामने के रास्ते हों भी, नेकी की अपॉर्चुनिटीज हों भी, उनको नजर ही नहीं आती। ये अल्लाह ताला उनको दिखाता है, उनको रहनुमाई करता है जो इस कुरान को अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते हैं, उनको फिर रास्ते भी नजर आने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। इसीलिए आप देखें सुबहान अल्लाह, सुबुल असलाम आप देखें कितने सारे हैं। कई लोगों को आप देखते हैं कि वो लोग नमाजों में बहुत प्यारे हैं, इनकी नमाजें इतनी खूबसूरत हैं, कई लोगों का कुरान पाक की तिलावत करना बहुत प्यारा है, कई लोग चैरिटी वर्क इतना अच्छा कर रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी यानी एक तबीयत के अंदर होता है ना कि एक रुझान होता है, तो वो जब कुरान पाक की तरफ आते हैं तो कई सुबुल सलाम उनके लिए खुल जाते हैं, वो कई तरीकों से जन्नत की तरफ जा सकते हैं। अब मसलन किसी को आप देखते हैं वो वालदेन की खिदमत बड़ी करता है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं, आप शायद समझते हो कि ये तो आम सा ही एक बंदा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कौन सा रास्ता उसने इख्तियार कर लिया जिससे वो जन्नत पा लेता है। वो दूसरी जगहों पे शायद उतना तेज ना हो लेकिन वो इस रास्ते में बहुत तेज है। कई लोगों को और चीजों का इतना मौका नहीं मिलता मगर वो अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करते हैं, अल्लाह उनको बहुत सखी बनाया होता है। तो ये सुबुल सलाम है, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस किस तरह लोग नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, किस किस तरह लोगों ने कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए हुए जिनके जरिए वो अल्लाह की जन्नत तक पहुंच जाए, हैरत होती है। फिर तो कोई एक चीज को पकड़ के ना सोच लें कि बस ये ही है और अगर किसी ने ये नहीं किया ना तो बस वो तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं। नहीं, आपको क्या पता कि कौन किस चीज में आगे बढ़ रहा है। तो ये जुल्मतों से निकालता है, नूर में लेकर आता है। ये अंधेरे हैं इंसान के इर्द गिर्द, कहीं अगर आपके पास शिर्क के अंधेरे हैं, कुफर के अंधेरे हैं, कहीं गफलतों के अंधेरे हैं, कहीं बिद्दतों में कोई लोग पड़े हुए हैं उससे रोशनी में ले आता है, कहीं इंसान की अपनी अना के अंधेरे हैं, नफ्स के पुजारी है उसके अंधेरे हैं, तो एक कहीं गलत सोच है, गलत रोजानात है, ये सारे अंधेरे हैं, इनसे ये कुरान नूर में लाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं इसको बहुत कीमती समझ के पढ़िए, इस इल्म को समझें कि ये आपको अल्लाह ताला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इतना बड़ा एक मौका दे रहा है, इसका हक अदा कीजिए, इसको ऐसे चलते फिरते लेने वाली चीज नहीं है ये, इसको मुकम्मल यकसुई दें, फोकस फोकस के साथ पढ़िए। जो चीज फोकस के साथ ना की जाए, मिसला नाम आप खाना बना रही हैं, ध्यान आपका कहीं और है, आप उधर जा रही हैं, इधर कर रही हैं, आपने क्या डाला क्या नहीं डाला उसके अंदर कुछ पता ही नहीं, वो क्या बनेगा, वो क्या खाना बनेगा। जिस वक्त आपके कोई मेहमान आने होते हैं, आपने कोई खास खाना है बनाना है, आप कितना फोकस करती हैं। आपने अगर बेकिंग भी करनी होती है ना, तो आप एक एक चीज को लेवल करके मेजर करते हैं कप में भी, कि कहीं कोई चीज जरा सी ज्यादा या कम ना हो जाए। इन कुरान के मामले के अंदर हम क्यों ये सोचते हैं, चलते फिरते बस सुन लूंगी कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, हमारी कोई बड़ाई नहीं, हमारा कोई एहसान नहीं है कि हम ये पढ़ रहे हैं, अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें चुना कि हम ऐसी ऐसे कलाम को सीखें और समझें जो सुबुल सलाम की तरह रहनुमाई करता है, जो हमें अंधेरों से निकाल लेगा, नूर में ले आएगा, जो हमें सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई कर देगा, तौफीक दे देगा इसकी। तो इसलिए इसको बहुत फोकस करके पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट बन जाते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं, लेकिन जब पढ़ने का मामला आता है तो फोकस ही नहीं है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजती हैं, उनको कहा करें कि वहां पे बेटा खेल में लगे रहना, कोई बात नहीं, टीचर की आवाज तो कान में पहुंचती ही रहेगी, क्या ये सही होगा? क्या वो इसके बाद कुछ हासिल कर पाएगा? नहीं। आप अपने बच्चों को हिदायत देते हैं, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, जहन लगाओ, लेकिन खुद हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमारे हाल देखें जरा क्या, 10 तरफ दिमाग घूम रहा होता है, अगर बैठ भी जाते हैं किसी कुर्सी पे तो। फोन हमारे पास पड़ा होता है कि हम बार बार फोन पे भी कुछ चेक करते रहें, नहीं तो घर में घूमने शुरू कर देते हैं। जब आपका फोकस लूज हो जाए, बंद कर दें, और उसके बाद दोबारा आप रिकॉर्डिंग में सुन लें, मगर ऐसा ना पढ़ें कि जो पढ़ा और ना पढ़ा बराबर है, ठीक है? ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं आपको होगा। जिसने इसको कीमती समझ के इस इल्म को लिया अल्लाह की खातिर, वो देखेंगे उसकी जिंदगी बदल देगा ये इल्म, और जिसने इसको चलती फिरती चीज लेके समझा, तो फिर वही हाल है, सर्टिफिकेट्स तो मिल जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है? तो ये इसकी सिफात देख लें। दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इंसान को अंधेरों से नूर में ले आए, दुनिया का को कोई इल्म ऐसा नहीं है जो सिराते मुस्तकीम पे चला दे, दुनिया को कोई इल्म ऐसा नहीं जो ऐसी रहनुमाई करे। हाँ, आपको ऐसी किताबें जरूर मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि जी आप इतने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इतने पैसे कमा सकते हैं, या आप पैसों को डबल कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा इल्म नहीं है जो हलाकत से इंसान को अमन में ले आए, जो इंसान को हलाकत से बचा के और सेफ्टी में ले आए, क्योंकि ये अल्लाह की रस्सी है ना, ये गुमराही से निकाल के सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करती है, ये वो है जो इंसान को जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत की तरफ ले आती है। तो मुझे बताएं, दुनिया के कौन से इल्म ऐसा है जो जन्नत तक पहुंचाने का आपको नुस्खा दे दे? हाँ, ये जो पैसा कमाने का दे देते हैं, चलो पैसे अगर आपने कमा भी लिया अव्वल, तो उसमें भी गारंटी नहीं है, मगर वो पैसे मिल भी गए तो खुशियों की गारंटी का कोई नुस्खा नहीं है इस दुनिया में कि आपको खुशियां जरूर हासिल हो जाएंगी। हाँ, मगर ये कलाम ऐसा नुस्खा देता है जो हमेशा की खुशियों तक आपको पहुंचा देगा कि उसके बाद कभी कोई गम नहीं होगा। ये तो मोजा है अल्लाह की तरफ से। आप सोचें, उर्दू में 300 से ऊपर, सिर्फ उर्दू की बात कर रही हूँ, 300 से ऊपर तफासीर इस कुरान पाक की लिखी गई है, और हर तफसीर दूसरे से अलग है, ये नहीं कि एक ही बात लिखी हुई है, हर तफसीर अलग है। और सोचें कि ये कितनी डेप्थ है इसमें, ये है इसका मोजा कि इवन जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी इससे कोई नसीहत ले लेंगे, जो बड़े बड़े आलिम हैं वो भी इसकी गहराई में उतर के इसमें से अपने लिए नसीहत ले सकते हैं। यानी जितना आपका कैलिबर है, जितनी आपकी जहनी सतह है, उसके मुताबिक ये आपको दे देगा। अगर एक अनपढ़ बंदा है, वो उसकी छोटी दुनिया है, वो उसके मुताबिक उसको इसमें से कोई नसीहत मिलेगी। जो बड़े बड़े आलिम है, वो एक एक आयत की गहराई में जाते हैं तो उनको वो मोती मिलते हैं, हर एक के लिए ही। और तासीर इसकी ऐसी है कि जिसको नहीं भी समझ आता तो फिर भी वो सुनता है तो दिल पे असर करता है। आप देखते हैं कई कारी ऐसे पढ़ते हैं इसको, सुभान अल्लाह, इंसान जिसको ना भी समझ आ रहा हो, आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
दिल करता है सुनने को, और आम इंसान सुनता ही जाता है, तो क्या तासीर है इसमें? और ये कि इसकी तासीर कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए आप एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा भी करेंगे ना, तब भी इसके अंदर से मोती जो आप चुन सकते हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। इसके खजाने ऐसे हैं, आप और गहराई में उतर जाएं, और में उतर जाएं, और में उतर जाएं, आपको और ज्यादा कुछ मिलता जाएगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है बहनों कि हम इसकी कदरों कीमत को समझें, जानें, इसको ऐसे ही फरागत का मशगला ना समझे, ठीक है, कि चलो और कोई काम नहीं, चलो यही कर लेते हैं, चलो सवाब ही मिल जाएगा। नहीं, बहुत बड़ी चीज है, इसको खजाना समझिए, तभी कदर आएगी इसकी। हम इस पैसों को इससे ज्यादा कदरों कीमत देते हैं कि जिस वक्त हम जॉब के लिए भाग जाते हैं कहीं और वहां पे फुल टाइम जॉब करते हैं, लेकिन जब कुरान की तरफ क्लास की बात आती है तो कहते हैं 3 घंटे भी बहुत मुश्किल है। तो ये ना करें, किसी चीज को इसके ऊपर फोकलियत ना दें। इस कुरान को मेरी और आपकी जरूरत नहीं, मुझे और आपको इसकी जरूरत है। ये हमारे बगैर भी 1400 साल से ऐसे ही है और अपने खजाने दे रहा है, और ये इसी तरह रहेगा। मैं और आप चले जाएंगे, इसके बाद अपनी दोबारा देखें कि मैं किस तरह से कुरान पाक सीख रही हूं, क्या मैं हक अदा कर रही हूं या नहीं, क्या मुझे इससे रहनुमाई मिल रही है या नहीं, मुझे रास्ता नजर आ रहा है कि नहीं। अगर रास्ता ही नहीं नजर आ रहा तो क्या अभी तक क्या सीख रहे हैं? कोई सुबुल सलाम नजर आए, क्या मैं जुल्मतों से नूर में आई हूं या नहीं, ये तो करता तो है, मेरे लिए कर रहा है कि नहीं, ये तो पता चले ना। तो अब हम आज का जो सबक देखेंगे इसकी तरफ आते हैं, इंशाल्लाह अपनी नियतों को खालिस करके अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हमें जन्नत तक पहुंचा दे और अपनी रजा अता फरमा दे। लकद कफर अल्लदीन कालू, अलबत्ता तहकीक, कुफर किया उन लोगों ने, किन लोगों ने कुफर किया, कालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, के बेशक अल्लाह ही वही मसीह इब्न मरियम है। क्या मतलब? एक तो आपको पता है ना कि ये हमने जो शुरू की हुई है बात, वो आयत 12 से आगे तक हम बात कर रहे हैं अहले किताब की, यहूदो नसारा के अकायद की भी बात हो रही है, इन्होंने जो मीसाक तोड़ा उसकी भी बात हो रही है, और वो हम पहले देख भी चुके हैं। अब ईसाइयों के अकीदे को कि ये जो फॉल्ट है उसको बताया गया। उनमें एक फिरका ऐसा था और आज भी है, उसको उर्दू में याकूबिया फिरका कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि इनकी उसमें क्या कहते हैं। एक तो ट्रिनिटी का अकीदा रखते हैं ना, लेकिन एक वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अस्तगफुरुल्ला, कि अल्लाह ताला ही ईसा अलैहिस्सलाम की जात में हलूल कर गया, यानी शक्ल तो ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके अंदर अल्लाह है, अस्तगफिरुल्ला। तो ये अकीदा कुफर का अकीदा है। ये इस किस्म के अकायद हिंदुओं के अंदर भी हैं, वो भी कहते हैं कि खुदा का अवतार, वो भी कहते हैं इसके अंदर आ गया, फिरौनी भी कहते थे, मतलब तारीख में आप उठा के देखें ना तो बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं कि ये फिरौन के अंदर खुदा ही उतर आया। तो बहुत सारी कौमें इस तरह गुमराह हुई कि खुदा जमीन पे आ गया है इफलां की शक्ल में। इजी वर्ड्स में आपको ये मैं बताती हूँ, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि खुदा जमीन पे उतर आया किसकी शक्ल में, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। और ये इतनी गंदी बात है, इतनी बुरी बात है कहना मुंह से, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये कुफर है जो इन्होंने किया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों में भी कोई लोग हैं जी जो ऐसी बातें करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि ये, अब ये बात चाहे कोई ईसाई करे या अपने आप को मुसलमान कहने वाला करे या हिंदू करे, कोई भी कहे, ये कुफर का अकीदा है। क्या वो कहते हैं कि नूर मिन नूर इल्ला, ये नूर है अल्लाह के नूर में से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आ गए। इसी तरह बाज ने ये कर दिया कि हजरत अली जब अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला, यानी ये एक वाइज वाज में अपने कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो वहां पे उन्होंने जब देखा पर्दे खुले तो देखा कि अर्श के ऊपर तो अली है। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि ये कहां से अकीदे ले आए। और हजरत अली ने जलवा दिया था ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था, उनके जमाने में भी थे जिन्होंने कहा था कि हजरत अली खुदा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके मकाम से ऊपर ना करो, गुलूव ना करो आपकी जात में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज की नसीहतें की कि मेरे बारे में गुलूव ना करो जैसे कि अहले किताब ने किया, उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहदीस ऐसी हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आप कितने केयरफुल थे इस मामले में, जरा सा भी लोगों को ऐसी बात नहीं कहने देते थे जिससे कहीं कहीं कोई भी ऐसे शायबा भी हो जाए कि आपके मकाम से बढ़ा के नाउजुबिल्ला कहीं अल्लाह के बराबर कर देना या क्या। और आज तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो तो कहते हैं कि मांगना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हमारी जो हस्ती आज तक चल रही है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आपका मकाम तमाम मखलूक में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी आप मखलूक ही हैं, आप खालिक नहीं हैं, आपको कुरान अब्द ही कहता है। ठीक है, तो इससे अपने अकीदों की भी दुरुस्ती जरूरी है कि हम भी ऐसा ना करें कि अपने पैगंबर को उलूहियत के मकाम पे बिठा दें। और जो आज की ट्रिनिटी है वो भी एक तरह से समझ लें कि ईसा अलैहिस्सलाम को इला ही मानती है, क्योंकि खुदा का बेटा कह देना वो तो खुदा ही हो गया, वो भी कुफर ही है। फरमाया अल्लाह ताला ने जबरदस्त बात से उनका रद्द किया, कुल कह दीजिए ए नबी आप इनको कह दें क्या, फमन यमलिकु मिन अल्लाह शैयन इन अरादा अन युहलिकल मसीह बन मरियम व उम्महु व मन फिल अर्द जमीअ। लो बात ही खत्म हो गई, बात ही यहां पे खत्म हो गई कि ये तो मुझे बताओ वो कौन होगा जो अल्लाह को रोक सके अगर अल्लाह इरादा कर दे कि मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ को भी और सारे जो जमीन में सबको हलाक कर दे, इनको फना कर दे, कौन है जो अल्लाह को रोक सके, ये आप बताओ। यानी अल्लाह ताला ने अपनी इख्तियार, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी कुदरत का यहाँ पे इजहार फरमाया कि तुम कहते हो कि वो इलाह है। तो अच्छा, इलाह का जो भी किसी के दिमाग में खुदा का तस्वुर है ना, जितने मर्जी मजाहिब आप ले लें, चाहे कोई गया से गया गुजरा किसी ने तस्वुर बनाया हुआ अपने दिमाग में खुदा का, मगर जितने भी ये छोटे जी से जो हम गॉड्स लिखते हैं जिनको गॉड ये कहते हैं, एक बात सब में कॉमन है और वो क्या है कि सब बिलीव करते हैं कि गॉड वो होता है जिसके पास पावर होती है कि नहीं। ऐसा सब ये बिलीव करते हैं कि अथॉरिटी पावर। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने इला कह दिया ईसा अलैहि सलाम को, तो ये बताओ कि उनके पास क्या अथॉरिटी है अगर अल्लाह ताला उनको फना कर दे और उनको ही नहीं उनकी माँ को भी फना कर दे, तो वो तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। वो तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। नबी अलैहिस्सलाम तो वसलाम को ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए थे, अपने आप को खुद से नहीं बचा सके। इंसान इंसान ही है, तो बताओ कौन फिर इख्तियार रखता है किसी को बचाने का, कोई अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता। ये कैसे हैं खुदा जिनको तुमने खुदा कहा है, ये कैसे हैं कि इनको सलीब पे चढ़ा दिया गया, इनके बकौल तो सलीब पे चढ़े ना, हम तो वो कहते हैं वमा कतल हुआ वमा सलब हु, उनको ना कतल किया गया ना सलीब दी गई, ये तो मगर बिलीव करते हैं ना कि भाई उनको क्रूसीफाई किया गया। तो भाई कौन सा खुदा ऐसा है जिसको क्रूसीफाई किया जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम कहते हो कि वो तुम्हें भी बचाएगा कयामत के दिन, वो तो खुद को भी नहीं बचा सके। तो जिसको खुदा समझ रहे हो या जिसमें खुदा हलूल कर गया, वो कैसा इला है इतना बेइख्तियार। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी माँ भी बेइख्तियार है, और सिर्फ वो ही नहीं, जिसको भी कोई दुनिया में समझता है कि ये खुदा है, अल्लाह उसको भी खत्म कर दे फना कर दे। जितने भी लोगों ने खुदा बनाए हुए हैं उनको भी, उनके पुजारियों को भी, जितने जिन और इंस हैं और जितने जानवर हुआ, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, अल्लाह सवाल कर सकता है। قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ختم کر دے. جانتے ہیں آپ کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر سب کو جہنم میں ڈال دے، سب انسانوں کو، تب بھی یہ اس کا عدل ہے، ظلم تب بھی نہیں ہے. وہ سب کو فنا کر دے تب بھی اس کا عدل ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کا اختیار ہے، اور انسان تو کبھی بھی اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتا. تو سب کو بھی وہ جہنم میں ڈال دے تو اس کا عدل ہے. ہاں وہ جنت میں ڈالتا ہے، اس کی رحمت ہے. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. ان کے عقیدے کی بتایا گیا کہ اس میں کیا غلطی ہے، اور انہوں نے یہ عقیدہ کیوں اختیار کیا ہوا تھا، ان کا کیا وجہ تھی، اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بن باپ کے چونکہ ہو گئی ہے، لہٰذا وہ خدا ہے. تو وہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی بغیر پیدا کیا، ان کو تو صرف مرد کے بغیر پیدا کیا، وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو وہ ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی پیدا فرمائی. دیکھیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کا بھی جواب ہو جائے گا. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ تو وہ ہے جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ با اختیار ہے. یہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ خدا یا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف رکھ کے ہم کسی اور کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جس کو کوئی بھی پوج رہا ہے اس کا کیا اختیار ہے بتائیں؟ کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، ان میں سے کسی کی بادشاہت نہیں آسمانوں اور زمین میں. ان سے جا کے پوچھ بھی لیں تو مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ پیدا بھی ہوئے ہیں وہ مر بھی رہے ہیں، کیا بادشاہت ہے ان کی؟ اسی مٹی میں جا رہے ہیں یا ان کو جلایا جا رہا ہے؟ تو یہ کون سے خدا ہوئے جن کو لوگ آج پوجنے لگے ہیں؟ اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ اس سب کی بھی بادشاہت اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو مرضی پیدا کرے، وہ خدا ہے، اس کی مرضی ہے نا. وہ چاہے بن ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام کو، چاہے بن ماں کے پیدا کر دے، آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، چاہے بن باپ کے پیدا کر دے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، چاہے ماں باپ کے یعنی مرد اور عورت کے تھرو پیدا کر دے جیسے سارے انسان پیدا ہوئے، چاہے مرد اور عورت ہیں بھی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی دونوں میں کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہ ان کو دے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کیونکہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ایک میتھڈ اس طرح کا بنا دیا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوں گے تو ضروری اولاد ہوگی، یا یہ نہیں ہوں گے تو اولاد ہونی نہیں، کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ تو اللہ پیدا کرنے والا، تو وہ جو چاہے پیدا کرے. واللہ علی کل شیء قدیر. اس پہ نا ہم سب کو ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس کے ایز اے سائیڈ نوٹ. دیکھیں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی، ہم نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کائنڈ آف ایک اعتراض کی سینس میں کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں. اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ نے وہ کیوں کیا. اب آپ اس کے آگے جملے لگا لیں جو بھی آپ نے بھی آج تک سنے ہوں گے، میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتے. بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اب دوسری جگہ آیا یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے پیدا کرے یا جو چاہے کام کرے، کسی کو موت دے، کسی کو زندگی دے، کسی کو بیمار کرے یا کسی کو ٹھیک کر دے، یا کسی کو مال دے دے یا کسی کو نہ دے، یا کسی کے کوئی غم آ جائے کسی کے اوپر، کوئی ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، یا کسی کو خوشیاں دے دے، کسی کو عافیت میں رکھے یا نہ رکھے، کسی کو اولاد دے کسی کو نہ دے، کسی کو بیٹا دے کسی کو بیٹیاں ہی دے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے. یا فالو مایا شاہ، یخلق ما یشاء، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ اعتراضات کرنے والے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ میں صرف یہ بادشاہ صرف دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہ سمجھے، جو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، وہ تو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بغاوت نہ ہو جائے، یہ ہمارے وزیر مشیر ہمارے ساتھ رہے. اللہ وہ بادشاہ ہے جو ایبسلوٹ پاور رکھتا ہے، ایبسلوٹ، اس ایبسلوٹ اتھارٹی ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کو راضی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے، اور کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے بادشاہت کرنے میں، اپنا رول چلانے میں اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کے ووٹوں کی، کسی لوگوں کے ساتھ کی، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے، نہ کسی بھی مخلوق کی ضرورت ہے، ایبسلوٹ بادشاہ ہے وہ، دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہت نہ سمجھ لیجئے گا، مکمل اختیار ہے اس کو. پھر اس کے بعد پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یہ کوسچن کریں کیوں ایسے کیوں کیا؟ پہلے یعنی ہمیں بتایا جائے، ہمیں پہلے انفارم کیا جائے، یا ہمیں حکمتیں بتائی جائیں، یا ہم سے پوچھا جائے نعوذ باللہ ہم کیا چیز ہیں. اب ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں ہو گیا، اللہ ایسے کیوں کرتا ہے، وہ ویسے کیوں کرتا ہے، پھر ہو گئی اس کا یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہوا. یہ ہمارے کرنے کے سوال نہیں ہیں. کیوں نہیں سر کو جھکا دیتے؟ کیوں نہیں اللہ کی رضا میں اور ہر حکم میں مان جاتے اور کہہ دیتے وہ جو کسی نے شعر کہا نا، جو مثال یار میں آئے، کہ جو اللہ تعالیٰ تیری جس میں رضا ہے اللہ میں بھی اس میں راضی. ضروری نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو وہ اس پہ خوشیاں منانے شروع کر دے کہ میں اس کے اوپر بڑا خوش ہو گیا ہوں کیونکہ یہی اللہ کی رضا تھی. نہیں، یہ نہیں، انسان دکھی بھی ہوگا انسان، لیکن اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا کہ اس نے فیصلے میں ایسا کیوں کر دیا. ہاں دکھ ہوگا، ظاہر ہے، کچھ کوئی غم آئے گا اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اس میں رو بھی رہا ہے یا اس کو دکھ ہو رہا ہے، وہ سیڈ ہے، اس میں نہیں کوئی مسئلہ، لیکن اللہ کے اوپر اعتراض مت کرو. کیونکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ قرآن کے موتی ہیں، ان کو چن لیں، یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کو دل میں اتار لیں. ایک ایک بات ہے نا جس سے ہم اپنی زندگی کا ٹریک صحیح کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے جو ٹیڑھے پن ہوئے ہیں نا دماغ میں، پتہ نہیں کیا گھس گیا ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں ہم سیاستدانوں پہ اعتراض کر لیتے ہیں، ہم تو حکومتوں پہ اعتراض کر لیتے ہیں، ہم تو انسٹیٹیوٹس پہ اعتراض کر لیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بھی ایسا کہہ دیتے ہیں، ہم تو ماں باپ کو بھی ایسا کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح ہم نے پتہ نہیں اللہ کو بھی ایسا کہہ دینا ہے، تو ہمیں جو سمجھ آتا ہے ہم تو کہیں گے. نہیں، ایک لمٹ ہے، حد ہے، انسان اپنی حد میں رہ، حد سے آگے نہ بڑھ. یہ تیری حد نہیں ہے کہ تم اللہ کے اوپر کوسچن کرے، سمجھ آئی؟ نہ تمہاری اتنی کیپیسٹی ہے، نہ تمہاری اتنی عقل ہے، نہ تمہاری اتنی سمجھ ہے، نہ تمہاری اتنی اوقات ہے اے انسان کہ تم اللہ کے اوپر کوئی بات کرے. اتنی بات کوئی اگر آپ کر لو نا کہ اس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے اوپر اس کی بادشاہت ہے، زمین میں جو کچھ ہے، جو ان کے درمیان ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے پھر؟ آسمانوں کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان آپ کہیں گے جو آسمان اوپر، آسمان مین یونیورس، یہ سارا یونیورس ہے نا آسمان کہلاتا ہے، جو زمین سے باہر ہے اوپر. اور بینہما میں دیکھ لیں آپ جتنی بھی خلا ہے، اس کے اندر جتنے بھی سیارے ستارے یہ سارے آپ کے، یہ سب اس کے اندر ہی آ گئے. کوئی چیز باہر ہے اس سے جس کی حکومت ان سب کے اوپر ہے، کتنا بڑا وہ حاکم ہے، تو ہم کیا چیز ہیں پھر؟ تو اپنی حد میں رہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے سوال سوال نہیں ہوتے، ان میں اعتراض ہوتے ہیں، اور اعتراض چھپے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر، اور وہ پتہ چل رہے ہوتے ہیں اعتراضات، اور اللہ تو نیتوں کے بھی حال جاننے والا ہے. اب ہم کہیں تیمم کا کیوں کہہ دیا، لو اس کا کیوں کہہ دیا، وہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ مسا کا کیا ہو گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور کئی اور مسائل ہیں جن کے اوپر ہم بے دریغ منہ کھول دیتے اور سوچتے بھی نہیں ہے سیکنڈ ٹائم کہ ہم کس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ حکم کس کا ہے، یہ بات کس نے کہی ہے. آپ انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی انسان نے آپ کو بتا دی یا کسی اللہ کے دین کی کوئی بات آپ کے سامنے آ گئی، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، उसमें मीन मेखे निकाल रहे हैं। तो आप ये कुछ सोचें, सोचा करें, ये कहने वाला जो है ये नहीं ओन करता इसको। ये उस बादशाह ने ये बात बताई है और ये हुक्म हमें दिया है, जो आसमानों जमीन और उनके दरमियान जो कुछ है उस सब का मालिक है, खालिक है, राजिक है, चलाने वाला है, इस पे पावर रखता है, अथॉरिटी है उसकी। हम तो छोटी छोटी अथॉरिटी वालों से दब जाते हैं, मरऊब हो जाते हैं। पुलिस वाला ही आ जाए हमारे घर के बाहर तो हमारी जान निकल जाती है। इतनी इतनी छोटी अथॉरिटी वालों से भी हमारी टांगे कांपने लगती हैं। FBI का नाम सुन के हमारे हलक में थूक फंस जाता है। इनके नाम भी हमें डरा देते हैं। तो अल्लाह की बात, और कोई खौफ नहीं है। वकालत यहूद वन्नसारा। अब इसके बाद अब यहां पे यहूदो नसारा की और खराबियां बताई जा रही हैं। और पहले आपने ये देख लिया ना, ईसाइयों की तरफ बात थी, अब यहूदो नसारा दोनों की बात आ रही है। उनकी एक खुशफहमी की बात, कालत यहूद नसारा नहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। अल्लाह के बेटे वो ये नहीं कहते थे कि हम उसके कोई बायोलॉजिकल उसके बेटे बन गए हैं, मगर अपने आप को जैसे कहते हैं ना, किसी का बेटा होना उसकी बड़ी खास बात, उसकी लाडला या मोहब्बत की बात, ठीक है? तो जिसके साथ बड़ी मोहब्बत होती है उसके लिए कह देते हैं कि ये तो मेरा बेटा है। तो वो कहते थे कि हम इतने अल्लाह के करीब हैं, हम इतने अल्लाह के लाडले हैं कि हम बेटे हैं उसके। तो हकीकी बेटा अपनी जगह होता है, और एक मुंह बोला भी बेटा होता है, तो एक मोहब्बत के तौर पे भी आप किसी को बेटा बना लेते, तो वो वाला बेटा है ये मोहब्बत के तौर पे करने। वह अहिब्बाउ, और उसके चहीते भी हैं, महबूब हैं उसके। यानी सोचें आपके, इनकी हालत ये हो गई थी कि अमल तो ये थे, और बातें देखें क्या है, कि अपने आप को इतनी सुपीरियर चीज समझते थे। और ये सिर्फ उस वक्त की बातें, खास तौर पे यहूद के अंदर आज भी ये है कि आपको पता है वो सोचते हैं कि हम एक सुपीरियर हैं सारी इंसानियत से, और दूसरे इंसान ना उनको ऐसे नजर आते हैं जैसे कि एक हकीर कीड़े हैं, अगर ये मर भी जाएंगे इनका खून भी बह जाएगा तो कोई बात नहीं है, ये नीचे हैं, यानी नीच समझते हैं उनको, खुद को बुलंद समझते हैं बहुत। तो हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम उसकी औलाद हैं, यानी उसके रसूलों की औलाद हैं, ये भी कह सकते हैं। तो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको दावत देते थे ना दीन की, तो ये कहते थे हमें क्या जरूरत है इसकी, हम किसी दावत वगैरह की, ये हमें नहीं जरूरत है, हमें ना बताया करो ये बातें, हम तो वैसे ही अल्लाह के प्यारे, इतने लाडले हैं, तो हमें कहाँ ऐसी चीजें चाहिए, किसी और को बताओ जाके। तो इतना उनके अंदर फजीलत का जोन था। और ना जब किसी इंसान के अंदर ये ख्यालात आ जाते हैं ना कि मैं बड़ी चीज हूं, तो वो फिर कुछ अमल करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है। लेकिन जब इंसान सोचता है मैं कुछ नहीं, तो हमेशा आपके दिल में अगर ये ख्याल होगा ना कि मैं कोई चीज नहीं, तो आपको हमेशा ये होगी कि मैं कुछ बेहतरी करने की कोशिश करूं अपने अंदर, मैं अपने अंदर इसलाह लिख रहा हूं, मैं कुछ इंप्रूव करूं, ठीक है? इस तरह जब आपको ये ख्याल होगा मेरे अंदर खामियां हैं, तो फिर भी आप कोशिश करेंगे मैं इन खामियों को दूर करूं। जब आपके अंदर अपने गुनाहों का एहसास होगा ना, तो फिर आपका सर झुका रहेगा, फिर तकबर नहीं आएगा। मगर जिस दिन इंसान को ये हो जाता ना, मैं तो नेक सीरत, मैं तो पाक दामन बीबी, मैं तो बड़ी अच्छी हूं, तो फिर इस्लाह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर इसी तरह तकबर की बातें मुंह से निकलने लगती हैं, हम तो जी ऐसे, हम तो सैयद, हम तो फलां, हम तो फलां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे कितने आजिज थे, कितने आजिज थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी जन्नत में अपने आमाल के जरिए नहीं जाऊंगा, ये तो अल्लाह की रहमत होगी जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। नहीं, ये नहीं कहते थे मैंने तो इतना किया, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा, तुम सब मेरे पीछे चलोगे? नहीं, मैं ही तो दरवाजा खुलवाऊंगा, ये बताई बातें, लेकिन क्या फरमाया, ये अल्लाह की रहमत होगी मैं भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जन्नत में जा सकता। इतनी आजी थी जब मक्का फतह किया तो उस वक्त ऊंटनी पे सवार थे और आपका सर इतना झुका हुआ था कि आपका सर लग रहा था ऊंटनी के कजावे से। इस कदर आजी थी और इनमें तकब्बुर कितना था कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, यानी एक तरह से हम बख्शे बख्शाए हैं, हम तो प्यारे हैं उसके। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल ए नबी, फिर इनको ये जवाब दें जब ये कहते हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। जैसे माशाल्लाह हमारे आज मुसलमान भी कई कहते हैं हमें जरूरत नहीं है ये इनकी, ये जो आप कुरान सिखाना ये वो सब कुछ आता है हमें पहले ही, यानी हमने क्या हिदायत लेकर करनी, हम तो पहले से हिदायत याफ्ता, वो पैदाइश ही हिदायत याफ्ता होते हैं। तो इन लोगों को भी बहुत तकब्बुर था अपने ऊपर, और इतनी बड़ी बातें करने वाले जाहिर है क्या किसी की सुनेंगे। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कह दीजिए फली मई वादे बुकुम बिजुनूबिकुम, इस बात को तो जरा जवाब दो, ये सवाल है तुमसे कि तो ये बताओ फिर अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से। कितनी तरह के इनके ऊपर अजाब आए आप तारीख उठा के देख लें, कहीं बंदर बना दिए गए, कहीं सुअर बना दिए गए, कहीं इनको ऊपर इतनी जिल्लतें आई तारीख में पता चलता है, इतनी मारे पड़ी इनको, कई दफा ये बैतुल मकदस को ईंट की ईंट बजा दी गई, से इतना खून इनका बहाया गया, इनको गुलाम बना के ले गए, बुख्त नसर ने कितनी तबाही की थी, फिर टाइटस ने आके कितनी तबाही की, फिर आप देखें रिसेंटली जो हिटलर ने हॉलोकॉस्ट में जो किया। तो अल्लाह क्यों फिर तुम्हें पकड़ता है, फिर अगर तुम इतने ही चहीते हो तुम्हारे पर जिल्लत तबाही क्यों मुसल्लत होती है। वैसे हमारे लिए सोचने की बात नहीं है, खुद बताएं, हम अपने गिरेबानों में तो झांके, जब ये हम सोच लेते ना हम तो चहीती उम्मत है जी, हम तो उम्मत मुहम्मदिया है हमारा, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जन्नत में जाएंगे नहीं जब तक हमें नहीं लेकर जाए, हमारी तो उन्होंने सिफारिश करा देनी है, हम तो बस सीधे जन्नत में उन्होंने हमें छुड़ा लेना। तो फिर उसके बाद इंसान खराबियां ही करेगा, फिर क्या इसलाह करेगा। जिसको ये है ना मुतमईन है जो कि मेरा वहां पे काम बना हुआ है, वो क्यों क्यों एफर्ट करेगा यहाँ पे, खुद सोचें क्यों कुर्बानी देगा, क्योंकि वो हलाल खाने के लिए इतनी मुसीबतें उठाएगा, क्यों वो रिश्ते जोड़ने के लिए इतने ताने और बातें सुनेगा, क्यों वो अदलो इंसाफ के लिए खड़ा होगा। तो जहां से उसके मफाद उसको मिलेगा वो करेगा, जहां पे उसकी उसकी बात बन रही है वो तो वो तरीका बाय हुक और बाय क्रोक वो तो करेगा। वैसे घी ऐसे नहीं निकलता, तो सीधी उंगली से निकलता, उल्टी से निकाले, उसको क्या पड़ी भी है कि वो कोई अपने आप को इतनी मुश्किलों में डाले, अपने आप को सुबह को उठे, तहज्जुद के लिए खड़ा हो, नमाजों के लिए खड़ा हो, कुरान के लिए वक्त निकाले और रोजे की मुशक्कत बर्दाश्त करे, क्या जरूरत है, वहां पे तुम्हारे काम बने हुए। तो जब इंसान को ये इत्मीनान हो जाता है ना कि वहां पे मेरा मामला सेट है, वहां पे किसी ने मेरे जिम्मेदारी ले ली हुई है, वो मुझे वहां पे पार करा देगा। आपको अगर पता चल जाए एयरपोर्ट पे आपके कोई बंदे हैं, लोग हैं जो आपको इमिग्रेशन से पार करा देंगे, आप जितना मर्जी सामान ले जाएं, तो आप जो मर्जी डाल लेंगे, फिर आप तो वे कर करके भी नहीं देखेंगे कि कितना वजन इतना तो नहीं है, आपको इत्मीनान है जी वो वहां पे खड़े होंगे, उन्होंने मुझे निकलवा देना, पार करा देना। तो जो लोग आखरत की अकीदे में ये सोचते हैं कि वहां पर मैं कुछ भी करूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते मैं बख्श दी जाऊंगी बस, वो फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते कि जिसमें कोई कुर्बानी हो, जिसमें कोई एफर्ट हो, जिसमें कोई फिक्र हो, कोई परेशानी हो आखरत की, वो नहीं ऐसी फिर गुजारते। तो इसीलिए अकीदा आखरत सिर्फ होना काफी नहीं है, बल्कि सही अकीदा आखरत होना जरूरी है। अकीदा आखरत तो सभी मुसलमानों का यहाँ कयामत है, मगर सही अकीदा सबका नहीं है। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटी से कि मेरी बेटी फातिमा अपने लिए कुछ कर लेना, मैं वहां पे तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा, ए मेरी पुप्पी सफिया अपना इंतजाम कर लेना, मैं नहीं तुम्हें वहां पे काम आ सकूंगा। उनको तो कह देते कि तुम लोग तो नेक ही हो, तुम्हें तो मैं बख्शवा लूंगा, इतनी फिक्र ना करो। अपने बच्चों के लिए तो इंसान सोचता है ना। वो बेटी तो बड़ी लाडली थी। तो ये उनका भी, यहूदो नसारा का भी जब ये था ना कि हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, ये जो दिमाग के अंदर एक विशफुल थिंकिंग होती है ना, खुशफहमियां, ये खुशफहमियों में रहने वाले फिर उसके बाद तो जरूरत ही नहीं समझते हमें हिदायत की क्या जरूरत है। वो कहते हैं आप अपने पास रखे हिदायत, हमने क्या करनी है। तो जैसे अब आज भी हमें खुशफहमियां हो जाए तो हमें भी नहीं कुरान की जरूरत, फिर हम जो मर्जी करें, ये कुरान हमें क्या बताएगा, फिर हम क्या क्यों इसके ऊपर चलें, जैसे दुनिया चल रही चलते रहो। तो अल्लाह ताला कहता है क्यों फिर वो अजाब देता है तुमको तुम्हारे गुनाहों की वजह से, अगर तुम इतने ही लाडले हो तो। इससे पता चलता है कि बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम भी बशर हो, इंसान हो, जैसे दूसरे इंसान, जैसे उसने दूसरे पैदा किए तुम भी वैसे ही हो। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई सुरखाब के परलगे में कोई सुपीरियरिटी में तुम, अल्लाह ने तुम्हें कोई खास ही मखलूक बना दिया, नहीं, जैसे वो है वैसे ही तुम हो, यानी जैसा कानून उनके लिए वैसा ही तुम्हारे लिए। सुन लें फिर खुद भी, हम भी बशर हैं दूसरों की तरह, कोई खास नहीं, अल्लाह ने हमें मिट्टी से पैदा किया। और अगर हम भी अपने आप को कहते हैं ना कि हम तो इतनी चहेती उम्मत है, तो क्यों आज अपने गुनाहों की वजह से अजाब सह रहे हो पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला की सब मखलूक है, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में अदल व इंसाफ करने वाला है। हाँ, वो जिसको चाहे, उसकी मर्जी है, जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे अजाब देते, उसमें ये नहीं है कि तुम खास चहीते हो तो तुम्हें उसने बख्शना ही बख्शना है, नहीं, वो उसकी मर्जी है, या वो कोई इससे नाउजुबिल्ला को मजबूर है कि इनके साथ में जो इतनी मोहब्बत है। देखिए मोहब्बत में भी इंसान मजबूर हो जाता है ना, ये मोहब्बत, मिसलन आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, अब आप उस मोहब्बत की वजह से इतने बेबस एक तरह से हो जाते हैं कि आप, कोई और कुछ गलत करता तो आप उसको क्या सुनाते, लेकिन अपने बच्चे के लिए आपके फिर भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, आप उस तरह से उसको नहीं पकड़ पाते। तो अब ये लोग ये सोचें कि ये जो कहते हैं कि हम अल्लाह के चहीते हैं, या ये ना सोचो, ये कभी ना समझना कि अल्लाह के चहीते, या वो ऐसे हो के आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के अंदर इतना मजबूर हो जाएगा नाउजुबिल्ला कि वो पकड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो अब मोहब्बत जो इतनी करता है तो कैसे इनको पकड़े। ऐसा नहीं है कुछ भी, तुम भी सारी मखलूक की तरह, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे अजाब दे। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, जहां अल्लाह के इख्तियार की बात आती है, उसकी कुदरत की बात आती है, तो फिर बता दिया जाता है कि बादशाह तो सारी की सारी अल्लाह के लिए, जो चाहे करे, किसी को माफ करे, ये भी नहीं आप एतराज करते तो उसको क्यों माफ कर दिया, इसको क्यों नहीं किया, इसके साथ क्यों ऐसा किया। देखिए ये उसका भी जवाब यहाँ पे भी आ गया, पहले भी आ गया, किसी को एतराज है ना अल्लाह ने क्यों ये पैदा किया, ये नहीं पैदा किया, अल्लाह ने क्यों बेटा दिया, बेटी ही नहीं दी, या बेटी दे दी बेटा नहीं दी दिया, इसको क्यों औलाद दी, इसका क्या कसूर था, उसको क्यों ये गम दे दिया, अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कोई सवाल करने का। यहाँ पे भी जिसको चाहे बख्शे, जिसको चाहे आजाद, जिस किसी को चाहे पकड़ ले, छोटी सी चीज पे ही पकड़ ले, किसी को चाहे किसी से राजी हो जाए तो उसको बख्श दे, तुम नहीं सवाल कर सकते। वह इलैहिल मसीह, और सबको ये बात समझा दी गई, चाहे तुम यहूदी हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, याद रखना वापसी उसकी तरफ ही है। चाहे खुद को जितनी भी बड़ी चीज समझते रहो, इसमें कुरैश के लिए भी है, वो भी इस दुनिया में खुद को बहुत सुपीरियर समझते थे, वो भी कहते थे कि हम जैसा कोई है ही नहीं है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, अब दोबारा उनको खिताब करके कहा गया, पहले भी उनको खिताब किया गया और कहा गया कद जाअकुम रसूलुना, आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल, अब भी बता दिया गया हमारा रसूल आ गया तुम्हारे पास, किस लिए, युबय्यिनु लकुम, कि वो बयान करता है तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को खोल खोल के वो बयान करता है। आला फतरत मिन रसूल, फतरा के बाद, रसूलों की फतरा के बाद। फतरा क्या होता है, फतरा का डिक्शनरी मीनिंग तो ये है कि एक चीज का असर मद्धम हो जाना, जैसी कैफियत को कहते हैं, मसलन रोशनी के बाद अंधेरा, या कुव्वत के बाद कमजोरी, तो मदहम हो जाती है ना कोई चीज, उसको फतरा कर। अब मुराद यहां पे क्या है, वो वक्फा जिसमें वही नहीं आई, यानी एक पैगंबर से दूसरे पैगंबर के दरमियान जो वक्फा आया है, ईसा अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक फतरा का पीरियड है, जिसको कहते हैं दौरे फतरते वही। वही इसमें रुक गई थी, इस वक्त कोई जाहिर है कोई नबी नहीं था दुनिया के अंदर, तो वही भी नहीं आई। अब ये कितने साल का वक्फा था जब तक वही रुकी रही, आप देखें कि वैसे बताते हैं कि 570 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का साल, क्रिश्चियन ईयर के मुताबिक 570 बनता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल पे नबूवत मिली, तो 610 हो गया, तो तकरीबन 600 साल तक वही नहीं आई। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उठा दिया, उसके 600 साल 6 सदियां गुजर गई, वही नहीं आई। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस फतरा के बाद अपने रसूल को भेजा जो युबय्यिनु लकुम, जो बयान करता है तुम्हारे लिए। यानी अब इस वक्फे के बाद ऐसे रसूल आए जिन्होंने तुम्हें अहकाम अल्लाह ताला के बयान करके बता दिए। अब अं तकुलु, कहीं तुम ये कहो, मा जा अना मिन बशीर वला नजीर। देख लें पहले भी हमने ये बात पढ़ी थी, आज भी अल्लाह ताला ने ये बात सुना के हमारे सारे एक्सक्यूज भी खत्म कर दिए, कि ये ना हो कि कयामत के दिन तुम ये कहो, अल्लाह हमारे पास तो कोई नहीं आया था, कोई ना बशारत देने वाला आया, ना हमें कोई डराने वाला आया, कोई हमें बताता तो सही आके कि ये अल्लाह के अहकामात है, तुम इन पे चलोगे तो जन्नत तक पहुंचोगे, देखो ये जहन्नुम का रास्ता है, तुम इस पे ना चलो, ऐसे कोई हमें डरा देता, कोई हमें आके बशारते देता, हम भी इस रास्ते पे चल लेते, हम भी अल्लाह तेरी इताअत कर लेते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए ये रसूल रसूलों के वक्फे के बाद भेजा, इसलिए वो जो वही जो मदम हो चुकी थी, मदम पड़ चुकी थी, उसकी में जो चेंजेस आ चुके थे, उसमें जो एडिशन लोगों ने कर दिए थे, बेसिक मैसेज ही चेंज कर दिया था, तौहीद का जो मैसेज था ईसाइयों ने भी बदल दिया, यहूदियों ने भी बदल दिया, जो अपने आप को मिल्लत इब्राहिम के पैरोकार कुरैश कहते थे उन्होंने भी पैगाम को बदल दिया, तो कहीं दुनिया में क्लैरिटी नहीं रह गई थी, क्लियर कुछ चीज किसी के पास रह नहीं गई थी। उस वक्त अल्लाह ने अपना रसूल भेजा ताकि ये सारी कंफ्यूजन से तुम्हें निकाल दे, और जो नई नई बातें शामिल की नहीं थी उनको दूर कर दे, और जो अकीदा तौहीद के अंदर इतनी बाकी चेंजेस को तो छोड़ें, जो बेसिक मैसेज है ना, जो जो पिलर है, जो बुनियाद है, वो तौहीद है, उसको ही बदल दिया। तो इतना ज्यादा जब मैसेज को करप्ट कर दिया गया था, तो अल्लाह ताला ने रसूल भेजा इसलिए ताकि मैसेज क्लियर हो जाए। दुनिया में लोग, इंसानियत अंधेरों से निकल के नूर में आ जाए, इसीलिए ये बहुत डेंजरस होता है कि नई नई बातें शामिल की जाएं। देखें जैसे ना पीरियड गुजरता गया, शुरू के अंदर तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उन्होंने ठीक अकीदे पे थे, सही थे, पर चलते 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 जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने अपनी अंदर बातें ऐड करनी शुरू कर दी। सेंट पॉल इनका एक था, वो ईसाई हुआ और उसने इतनी चीजें, खंजीर को भी हलाल कर दिया, और ये भी सारे ट्रिनिटी का, और ये सब चीजें ऐड कर दी, यहूदियों के अंदर कितनी चीजें ऐड हो गई। तो दीन में नई नई बातें, जैसा ही वक्त गुजरता गया वैसे नई बातें शामिल होती गई, और फिर देख लें इनके दीन का हाल क्या बन गया। वो तो पहचाना ही नहीं जा रहा, ये तो वो है ही नहीं जो वो रसूल लेकर आए थे, कुछ और ही बना के रख दिया। इस वजह से ये इतना सख्त गुनाह है दीन में नई बात ईजाद करना, या इसको प्रोमोट करना, इसको रिवाज देना। हम तो आराम से कह देते ना, इससे क्या फर्क पड़ता, नेकी की बात है ना, तो हमने कर भी ली तो क्या हो गया, बुरी चीज तो नहीं है ना। बात बुरी और अच्छी की नहीं होती, जब बिद्दतें ईजाद होती हैं, जब बिद्दतों को प्रमोट किया जाता है, खुद सोचें, चाहे अच्छी बात ही ले लें, आपने अच्छी बात एक कह दी, किसी और ने भी कह दी, तीसरे ने भी कह दी, हर साल अगर सिर्फ ये अच्छी बातें ही 5-7 लेके, चलो 5-7 छोड़े, एक एक अच्छी बात लेके दीन में डाल दी जाती, तो 1400 साल में 1400 बातें होती जो इस दीन में होती हैं, और आप फिर आप दीन को देख के कहते मुझे क्या पता, ये वाली अल्लाह की तरफ से आई थी या लोगों ने बना ली थी? डाउटफुल होते ना आप क्या नहीं चाहते कि आपके पास प्योर दीन आए, वो जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से था, या आप चाहते हैं कि कभी किसी बाबे ने कह दी, कभी किसी किसी ने कह दी, कभी किसी फलाने ने कह दी, कभी किसी बाजी ने कह दी, कभी फलाने ने कह दी, अब वो सारी बातों को मिला के खिचड़ी पका के वो आपको दे दी जाए, ये चाहते हैं आप? तो हमारी भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगली नस्लों को भी दीन को कैसे ट्रांसफर करें प्योर। इस दीन में तो लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी खुद हिफाजत फरमाई है, इसलिए आज भी आपको प्योर का भी पता है और जो लोगों ने बिदतें ईजाद की हैं वो भी पता है। इस उम्मत में हमेशा एक जमात रहेगी जो हक पे रहेगी। आज भी हक वाजे है कि कौन सी हदीस है जो सही है, कौन सी लोगों ने फैब्रिकेट करके खुद ही बना बनू के तो लोगों में फैला दिए, कौन सी चीजें लोगों ने खुद ईजाद की हैं। और उसका सबसे आसान तरीका कोई भी कम पढ़ा लिखा भी जान सकता है, सीरत को देख लें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो हम भी करेंगे, नहीं की तो नहीं करेंगे। मतलब दीन के मामले में किसी ने कहा जी व्हाट्सएप पे आया कि नया साल जब शुरू हो तो रात को 11 बज के पता नहीं 50 मिनट पे कि कितने मिनट पे आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं और उसमें ये सूरतें पढ़ें और रात के 12 बजे आपने ये दुआएं करनी है, ये कहां से निकाल लिया, किधर से निकाल लिया? इस तरह आप जुमा मुबारक कहने की वो उसकी मुबारकबादें दी जा रही, तो ये कहां से निकाल लिया आपने? खुद ही बनाव के दीन जाहिर है, जुमे को एक दीन का वो समझ के मुबारकबाद दे रहे हैं ना, दीन में जो चीजें हैं वो नहीं ईजाद कर सकते। इस तरह मिलाद बना लिया, शब्बे मेराज की इबादत बना ली, मेराज के दिन का रोजा बना लिया, 10 मुहर्रम है या 12 रबीउल अव्वल है उसके कितने जुलूस निकालते थे असहाबा कराम, या वो भी सबीले लगाते थे, उन्होंने तो 10 मुहर्रम का रोजा रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद तो आपने खुद बनाया है, हर मंडे को आप मिलाद अपना मनाते थे रोजा रख के, फरमाया मैं उस दिन पैदा हुआ था। वो उस तरफ हम आते नहीं है कि हम उसका रोजा रखें। इसी तरह 10 मुहर्रम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, हम लोगों को खाने खिलाते हैं, देगे पका रहे, आप किसी और दिन पका ले, लोगों को बांटने का इतना शौक है तो। इसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं जो हम करते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस दीन को पलूट होने से बचा लिया। आज भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें लोगों ने खुद ईजाद की हैं, बाद में उनकी हिस्ट्री पता चलती है किसने ईजाद की। हक को अल्लाह ताला ने खोल दिया हुआ है इसलिए कि अब कोई रसूल नहीं आना, तो अल्लाह ताला ने ये रसूल भेजा इसलिए ताकि कोई ना कह सके हमारे तक तो कोई आया नहीं, हमें तो कोई बताता तो फिर था। आ गए ना आपके पास भी रसूल, आपके पास उनकी हदीस है, आपके पास उनकी सीरत की एक एक बात है, उनका बीवियों के साथ बर्ताव, उनका इवन कजाए हाजत ये तक का बताया गया कि उसके आदाब क्या हैं, आपके उठने का बैठने का सोने का तरीका भी बताया गया। सोचिए आप, और तो बड़े बड़े काम तो अपनी अलग जगह पे, आपके मामलात कैसे थे, आप कैसे हाकिम थे, आप कैसे सिपा सालार थे, आप कैसे गवर्न करते थे लोगों को, आपका गरीबों के साथ क्या मामला था, आपका जब सरदार आते थे उनके साथ क्या मामला था, हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से आप सीख सकते हैं। तो अब हमारे पास कोई बहाना करना कि हमें भी नहीं किसी ने बताया, हमें कोई बता देता, ये खत्म हो गया हुआ अब एक्सक्यूज। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को भेजकर और उनकी जिंदगी को महफूज करके और वो जो पैगाम अल्लाह का लेकर आए इस कुरान की सूरत में उसको महफूज करके अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए ये एक्सक्यूज खत्म कर दिया कि काश हमें पता होता तो हम भी कर लेते। अब मेरे और आपके पास कोई भी ऐसा बहाना अगर है तो उसको आज ही खत्म कर दें, क्योंकि ये बहाना अल्लाह के पास जाके नहीं चलेगा, अल्लाह के पास नहीं आप दे सकेंगे। लिकुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ताला ने फरमाया हर कौम में हमने कोई ना कोई हादी भेजा, कोई रहनुमाई करने वाला भेजा, कोई रास्ता दिखाने वाला भेजा। तो इसलिए क्या कहेंगे हम जाके, हमें किसी ने नहीं बताया, किसी ने इन्फॉर्म किया, मतलब व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव, कोई है रास्ता हमारे पास? अल्लाह अकबर, फकद जा अकुम बशीर व नजीर, तो आ गए हैं तुम्हारे पास अब बशीर और नजीर, इन्ना अरसलना का बशीर व नज़ीरा, अल्लाह ताला ने फरमा दी सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि हमने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है नबी, आप उन खुशखबरियां दें लोगों को और उनको वॉर्न कर दें, फिर भी कोई नहीं सुनता तो उसकी अपनी मर्जी है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर अल्लाह ताला ने ये रसूल भेज के और पैगाम भेज के इतनी हर चीज क्लियर कर दी है कि अब अल्लाह के ऊपर कोई इल्जाम नहीं दे सकता, इसे हमारा तो कोई कसूर नहीं है, उसने ही नहीं भेजा, नहीं, अब तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो चाहे फतरा कर दे नहीं आई वही, जब चाहे वो नबी भेज दे, जब चाहे नबियों का सिलसिला खत्म कर दे, जब चाहे नबियों का इस तरह का सिलसिला था कि एक ही वक्त में इतने नबी थे जमीन के ऊपर, एक ही कौम में एक से ज्यादा नबी थे।